ओम शांति। आज भट्टी के तीसरे दिन हमारे बीच में शेड्यूल से थोड़ा सा चेंज होगा। आदरणीय गोपी दीदी पहुंचे हैं जो कि बाबा के यज्ञ की एक बहुत ही शाइनिंग स्टार है। आप बचपन से ही बाबा के ज्ञान में हैं और विशेष रूप से यूके में रहकर आपने लंबे समय तक दादी जान की चिंती दीदी के साथ बहुत सी सेवाएं की है। आपने लॉ की पढ़ाई की, एज ए बैरिस्टर आपने प्रैक्टिस भी की है, इंटरनेशनल यूथ फोरम से भी आप जुड़ी हैं, एक विश्व के अलग अलग देशों के यूथ जो बीके यूथ्स है उनका एक बहुत सुंदर संगठन है जो साल में एक बार हेडक्वार्टर में भी अपनी प्रोग्राम्स करते हैं, उनकी भी आप मेंबर हैं। और वैसे गुजराती फैमिली से आप बिलोंग करते हैं और फिर इंटरनेशनल लेवल पर सेवाएं करते हैं। वर्तमान समय हेडक्वार्टर में फूड सेफ्टी हेल्थ और हाइजीन डिपार्टमेंट जो बना है उनको भी आप हेड कर रही हैं। बहुत ही चिंतनीय आपका क्लास होता है और हम सभी को अभी लव एंड लॉ का बैलेंस कैसे मेंटेन करें उस पर क्लास कराएंगी आदरणीय गोपी दीदी।
ओम शांति। बाबा स्नेह का सागर, प्यार का सागर, प्रेम का सागर, स्नेह छोटे बच्चों को मिलता है, प्यार एक समान वाले को मिलता है और प्रेम जब संबंध में आते हैं, हस्बैंड वाइफ बनते हैं तब प्रेमी बनते हैं एक दोनों के। तो बाबा तो खान है, बेहद का खान है, आपको जो चाहिए बाबा से मिल सकता है। लेकिन सारा मदार लेने वाले पे है। जब भी हम अपने आप को बाबा का बच्चा समझते हैं, वो जो अंदर एक फीलिंग आती है, मैं ईश्वर की संतान हूं, बहुत मीठी फीलिंग आती है, तभी आप स्नेह का सागर का स्नेह लिख सकेंगे। जब ये अंदर संस्कारों में समानता आती है, बाप समान बनने का लक्ष्य रहता है और अपने संस्कारों में परिवर्तन आता है, तब प्यार का सागर की महसूसता आती है। और जब सब कुछ अर्पण कर लिया है, पूरा विश्वास है मेरे प्रेमी पे, यही मेरा एक है, एक बल, एक भरोसा है, तब प्रेम में डूबे रहते हैं। ऐसे नहीं कि बाबा नहीं दे रहा है, बाबा दे रहा है, लेकिन हमारे अंदर एक कॉन्शियसनेस शिफ्ट चाहिए, एक स्मृति की शिफ्ट चाहिए। अभी हम जिस तरीके से चल रहे हैं, अभी हम ये देह को एक जेल बना के चल रहे हैं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं फलाना हूं, मैं वो हूं, बाबा बाबा शब्द बोलते रहते हैं, लेकिन जो दिल का जुड़ाव होना चाहिए वो नहीं होता है। क्योंकि देह के पीछे अभी भी इच्छाएं है। मुझे कुछ इस पुरानी दुनिया से चाहिए, मुझे कुछ इस पुरानी दुनिया में बनना है, मुझे इस पुरानी दुनिया का पद पोजीशन चाहिए, मान शान चाहिए। चेक करो, क्योंकि प्यार देने वाला दे रहा है, बीच में जो लेने वाले हैं उसने बैरियर कौन सा लगाया है, ब्लॉकेज कौन सा है? डिजायर, कुछ न कुछ इच्छा है। इच्छा आपको स्नेह के पात्र नहीं बना सकता है। इच्छा ऐसे तो लोग दिवाला मार चुके हैं, अपनी इच्छाएं के पीछे भागे दौड़े दौड़े कितना बैंकरप्ट हो गए, सभी खाली हो जाते हैं। क्योंकि जैसे कोई हवा हवा में कोई महल होता है, उसके पीछे भाग रहे हैं। तो स्नेह के पात्र बनना है तो अंदर कई बातों का सपोर्ट को छोड़ना है। एक बाप दूसरा न कोई। प्यारा स्नेही प्रेमी तब बनेंगे जब सब कुछ ईश्वर के सामने अर्पण कर लिया है। और ईश्वर को सब कुछ अर्पण करना माना माना उसके हर डायरेक्शन को फॉलो करना, तभी अर्पण हो सकता है। हमने एक बारी बड़ी दादी को पूछा था, दादी बाबा आपको क्यों इतना प्यार करता है? तो दादी ने जवाब दिया कि दादी कि कभी आंखें कोई व्यक्ति या वस्तु में डूबी नहीं है, सदा एक बाप दूसरा न कोई। फिर थोड़े समय के बाद गुलजार दादी को पूछा कि बाबा आपको क्यों इतना प्यार करता है? तो गुलजार दादी ने बताया, क्योंकि बाप मेरे संस्कार में है और बाप मेरा संसार है। फिर दादी जानकी को पूछा प्रश्न कि बाप आपको क्यों इतना प्यार करता है? तो दादी ने बताया, क्योंकि दादी ने बाबा का एक एक डायरेक्शन को पालन करके प्रैक्टिकल में आज्ञाकारी, वफादारी, ईमानदारी रही है। चाहे सेवा के लिए डायरेक्शन, चाहे स्वउन्नति के लिए, कुछ भी छोड़ा नहीं है। बाबा ने बोला है ना, मुझे कंप्लीट करके करना है, कैसे भी करके प्यार का रिटर्न देना है ना। तो अंदर की एक प्रकार की जब वफादारी रहती है, तब एक प्यार का एक सूत्र बना रहता है। लॉ लव के साथ एक गहरा संबंध है, क्योंकि बाबा नया संसार लॉ के आधार से बना रहे हैं। और वो लॉ क्या है हमारे लिए? क्या है लॉ हमारे लिए? श्रीमत लॉ है, नियम मर्यादा श्रीमत सारे लॉज है हमारे लिए। ये पूरी सिस्टम जो बाबा ने बनाई है, जो हम उस सिस्टम को फॉलो करते हैं तब हम नई दुनिया के सिस्टम बनाएंगे। अभी एक एक को अपने दिल को पूछना है कहां तक लॉ मेकर्स बने हैं हम, लॉ ब्रेकर्स नहीं, लॉ मेकर बने हैं हम, क्योंकि हमारी भक्ति भी आपकी जो आपके जो भगत है, आप जितना नियम अनुसार चलेंगे, लॉ पे चलेंगे, इतना वो नियम अनुसार आपकी भक्ति भी करेंगे। आप ऐसे वैसे ऐसे वैसे तो आपके भगत भी ऐसे वैसे ऐसे वैसे, क्या आपको ये चाहिए क्या? आप खुद लॉ तोड़ रहे हैं तो आपकी आगे वाली राजधानी में लोग आएंगे जो लॉ तोड़ने वाले हैं, जो आपका मानेंगे नहीं। तो पहले खुद के लिए, मैं कहां तक मैं समझी हूं ईश्वरीय श्रीमत नियम मर्यादाओं को, कहां तक मैं जानती हूं इसको, या मैंने थोड़ा अपना नियम बना दिया है। कभी कभी खान पान में होता है ना, थोड़ा आकर्षण होता है तो हम एडजस्ट कर लेते हैं खान पान में, नहीं? हम कोई सेंटर पे गए थे सूरत में, और सूरत का भोजन तो बहुत मशहूर है, तो सेंटर में जो सेंटर की बहन थी वो हमको बता रही थी कि दीदी थोड़ा इनको भोजन का परहेज की बातें सुनाओ। मैंने बोला ये सभी पक्के बिके हैं ना, कह रहे हाँ लेकिन उनको थोड़ी सी वो वीकनेस है, ये जो बाहर का खाना मिलता है ना स्ट्रीट फूड, सारा वेजिटेरियन है लेकिन वो वहां बाहर से खाना खाते हैं। तो एक भाई संगठन में उठा और बोला बहन जी देखो कोई लसन प्याज नहीं है उसमें, वेजिटेरियन खाना है ना, टेस्टी है ना, क्या प्रॉब्लम है। माना शुद्धता हर एक नियम का फाउंडेशन है, कि जो भी हम कर रहे हैं, हम ब्राह्मण, हम श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा है, हम इस चीज को चाहे भोजन पका रहे हैं चाहे कुछ भी करें, इस चीज को ईश्वर के सामने अर्पण करना है। ऐसी वैसी चीज थोड़ी अर्पण करेंगे ईश्वर के सामने। और जब मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूं, तो जब मैं ये आत्मा इस शरीर में बैठी हूं, मैं इसकी ट्रस्टी हूं, ये एक मंदिर है, तो मंदिर में तो आप खिचड़ा पट्टी ऐसे वैसे भोग तो नहीं खिलाएंगे ना देवताओं को, क्योंकि ये देवता है। तो जब हम लॉ को लव से फॉलो करते हैं, खुद के साथ एक प्रेम भावना जागृत होती है, मैं खुद को श्रेष्ठ बना रही हूं, बाबा मुझे श्रेष्ठ बना रहा है, तब एक्यूरेट लॉ मेकर बन सकते हैं। अभी इसमें क्या है, कभी कभी कई लोग लॉ को फॉलो करते हैं मजबूरी से, करना पड़ता है देखा देखी में, अरे ये कर रहे तो मुझे भी करना है, या ड्यूटी समझ के या डिसिप्लिन समझ के खुद को बांध करके तो रखना है। जैसे छोटा बच्चा होता है, माँ सीधा रास्ता नहीं देखते तो नटखट होकर के इधर उधर चला जाता है ना, तो मन भी ऐसा है। चंद्रमणि दादी जी हमारी पहली मेडिटेशन टीचर थी, और उन्होंने हमको पहली शिक्षा यही दी थी कि योगी बनना है तो मन को लव और लॉ से चलाना है, दोनों चाहिए। ऐसे नहीं कि जैसे मन की भावना है वैसे बोले, ऐसे मन की भावना है वैसे सोचे, ऐसे मन की भावना है वैसे करे, ये तो केयरलेस लाइफस्टाइल है। हर एक व्यक्ति अपनी मन की भावनाएं से ही चल रहा है। श्रीमत ओम शांति। तो पहले कहां तक एक्यूरेट रीति से हर एक मर्यादा श्रीमत नियम को मैं जानती हूं, फर्स्ट स्टेप, परसेंटेज कितना तक, क्योंकि जितना तक परसेंटेज है जानने का उतना परसेंटेज होता है स्वीकार और पालन करने का। तो फर्स्ट ये, दूसरा जो मैं जानती हूं कहां तक कितना परसेंटेज तक उसको स्वीकार करता हूं या करती हूं कि हां ये चीज मेरे जीवन के लिए ठीक है। बाबा तो बहुत सारी बातें बताते हैं लेकिन कहां तक मैंने अपनाया है, पर्सनल नियम बनाया है। ज्ञान तो सुनते हैं लेकिन इंफॉर्मेशन बन जाता है जब तक एक लाइफ का नियम नहीं बनता है। हमारी दादी को इकोनॉमी एक नामी का नियम था। बाबा कहते हैं ना, विदेही ट्रस्टी जनक बच्ची, सच में वो नियम जो पालन किया था, एक के नाम से इकोनॉमी में चलना है। प्रैक्टिकल में आप लंदन आएंगे तो दादी की कोई पर्सनल गाड़ी नहीं थी। क्यों? इतने सारे भाई बहने हैं, सभी को सेवा का मौका मिलता है, दादी कंपनी देती है, तो अपनी पर्सनल गाड़ी क्यों ले? लास्ट तक दादी की कोई पर्सनल गाड़ी नहीं थी। तो नियम पे हम चलते हैं, हमने वो ज्ञान को एक नियम बना दिया है और हम उस नियम पे चलते हैं, तब उस लॉ से हमको बल मिलता है, अंदर से ताकत भरती है, क्योंकि हमारे पास प्रिंसिपल्स है। हम एक प्रिंसिपल्स के आधार से जीवन जी रहे हैं। हमारी डिग्निटी, स्वमान का फाउंडेशन ये है। आप देखेंगे ना, जिन जिन लोगों ने कभी अपने नियम के बारे में सोचा नहीं है ना, वो बस पैसे के पीछे भागते हैं, मन भटकता है क्या करूं, व्यक्ति के पीछे भागते हैं, ऐसे वैसे बस चलो यहां आ जावे, वहां जाए, शॉपिंग जाए, वो करे, बिल्कुल बिना मंजिल के तरस पड़ता है। कभी जो लवफुल और लॉफुल होता है उसके लिए मंजिल बहुत क्लियर है, सामने निशाना क्लियर है, और नशे में रहता है। और फिर तीसरी बात, एक है जानना, दूसरा है स्वीकार करना, और तीसरा है पालन करना, उसको एक्चुअली फॉलो करना। परसेंटेज है ना तीनों में, जानते हैं इतना, स्वीकार करते हैं इतना, और पालन करते हैं इतना। तो इतना डिफरेंस क्यों है? क्यों है इतना डिफरेंस? क्या याद का बल कम है? और क्या अलबेलापन? और क्या आलस्य? और क्या? अच्छा, जवाब देने में बहुत होशियार है। कभी कभी लोग कहते हैं, अरे बहन जी हम अभी पुरुषार्थी है ना, जैसे कभी कभी ड्रामा का शीर लेकर के अपने आप को छुटकारा देते हैं, तो वैसे ही हम पुरुषार्थी है ना, तो वो भी शील्ड आगे रख करके खुद को छुट्टी देते हैं। लेकिन कारण क्या है? देखो मैं आपको बताऊं, कोई चीज का संतुलन करना होता है ना, बीच में कुछ चीज चाहिए, देख रहे हैं ना स्केल्स में, बीच में कुछ चीज है। ये बच्चों के प्लेग्राउंड में जाएंगे तो वो सीसो होता है ना, बीच में कुछ चीज है। तो हमारे लिए बीच में कौन है? कौन सा बाबा? अच्छा, ब्रह्मा बाबा है। शिव बाबा है। तो हर एक बात में समझो, व्यवहार में, संपर्क संबंध में, जब शिव बाबा को बुद्धि में रखते हैं तब बैलेंस आएगा। शिव बाबा बुद्धि से हटा तो आपके संस्कार बुद्धि में आएंगे, उसका संस्कार देखेंगे, उस अनुसार व्यवहार होगा। तो बस एक मात्र का ही एक चेंज है, हम शिव के बदले शव को देखते हैं। और जैसे शव को देखते हैं तो विष, शिव क्या होता है? विष पीने का शुरू हो जाता है। ओनली वन शिफ्ट, माइक्रो शिफ्ट है। हमारे एक अंदर की एक आदत बनी रहे कि जो संकल्प आ रहे हैं पहले शिव के सामने उसको अर्पण करो। देवताओं को पहले भोग खिलाते हैं फिर हम खाते हैं, तो ये भी संकल्पों का भोग पहले बाबा के सामने रखो, अर्पण कर लो उसको। बिल्कुल अर्पण माना बाद में उसको उठाना ही नहीं है, दे दिए है ना चीज को। तो आप देखो आपकी जो संकल्प की क्वालिटी है, आप उस चीज को अर्पण कर सकते हैं। तो पहले अपने संकल्पों की क्वालिटी को साफ श्रेष्ठ बनानी है, फिर बाबा को अर्पण करो। जैसे बाबा आप चलाना चाहते हैं वैसे हम चलेंगे। और जो रियली एक समर्पित बुद्धि वाला होता है, आज्ञाकारी होता है, लॉ के हिसाब से चलने वाला होता है, वो कभी कोई प्रकार का जिद या सिद्ध नहीं करेगा। कोई किसी का ध्यान उसके तरफ खींचेगा नहीं, फोर्स नहीं करेगा, प्रेशर नहीं करेगा, ये उसके पास ही आदत नहीं होगी। लॉ पे चलने वाला उसको सही काम करने में कोई नहीं रोक सकता है, और इसको बुरा काम करने में कोई प्रेशर भी नहीं कर सकता है। लॉ पे चलने वाले के लिए, लेकिन जो व्यक्ति लॉ पे नहीं चलता है तो बुरे संग में आकर के, प्रभाव में आकर के, झूठे संग में आकर के टाइम वेस्ट, एनर्जी वेस्ट। चलो शुरू शुरू के दिनों में तो हम छोटी छोटी गलतियां करते रहते थे, उसका भोगना इतना नहीं होता था, लेकिन अभी अभी का समय ऐसा है कि एक व्यर्थ संकल्प का आपको हजार गुना भोगना पड़ेगा। इसलिए ये समय ऐसे हल्के नहीं समझो इसको। एक एक सेकंड, एक एक संकल्प से हम कमाई करें ऐसी अवस्था बनानी है हमको। मुझे लगता है कि शुरू शुरू में बाबा का पार्ट बाप का था, रहम दिल का था, प्यार देने का था। बाबा अभी साक्षी हो गया है और थोड़े समय के बाद धर्मराज का रूप लेगा। अभी इस समय में हमको क्या करना है? इस समय में खुद के ऊपर रहम नहीं करना है, शक्ति स्वरूप बन करके अपने पुराने संस्कार, झूठे संकल्पों को मारना है, क्योंकि अंतिम स्वरूप शक्ति स्वरूप का है। जिसमें बिल्कुल झूठी चीजें को नाश की जाती है। तो हम लॉ को फॉलो करके क्या कर रहे हैं? हाँ, हम कभी कोई किसी को लॉ कोर्ट में लेके जाते हैं, क्यों? क्योंकि उसने कुछ गलत किया है तो उसको जज के सामने बैठ करके माफी मांगना पड़ता है। तो फिर लॉ अप्लाई होता है करेक्शन करने के लिए। तो हम खुद यहां पे कचहरी करें ना, जैसे बाबा करते थे पुराने दिन में, रात को बैठ करके कचहरी करो खुद के साथ, विवेक को जज बना दो, अपने कर्मिंद्रियों वन बाय वन विटनेस बॉक्स में लेके आओ कि आज क्या किया तुमने, कौन सा लॉ पालन किया, कौन सा लॉ तोड़ा। और आप खुद के साथ ऐसे टाइट रहेंगे ना, तब आप औरों के प्रति, आप लोगों को लॉ दिखाएंगे और वो आपकी बात मानेंगे, अदरवाइज नॉट पॉसिबल। तो ये बहुत जरूरी है। मैं बहुत अपने आप को बीच बीच में ये टाइट कर देती हूं। मुझे बहुत सारी बातें आज बैठ करके याद आई, इसलिए मैं थोड़ा नोट्स लिया था इस सब्जेक्ट पे, क्योंकि कभी कभी हम सोचते हैं हमको प्यार चाहिए, प्यार चाहते फिर रिलैक्स हो जाते, इतने रिलैक्स हो जाते कि अलबेले हो जाते हैं। लेकिन हम कौन है? हम विश्व के आधार मूर्त है, हम नई दुनिया के पिलर्स है। पिलर ऐसे टेढ़ी नहीं हो सकती है, सीधा होना है पिलर को, कुछ भी हो जाए पिलर को, कहां से भी तूफान आए, कहां से भी पिलर को सीधा रहना है। तो जब लव माना रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि बाबा मैं एक रिस्पॉन्सिबल आत्मा हूं, मेरे हर संकल्प कर्म बोल के आधार से एक नई दुनिया, एक नया संसार बन रहा है। और जो पीछे की आत्माएं हैं वो देख रही है, उस अनुसार फॉलो कर रही है। तो जब हम इस लव को, एक श्रेष्ठ लव को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ लेंगे कि मेरा काम है सोल कॉन्शियस लव में रहना और सोल कॉन्शियस लव बांटना, वो है क्या? ईश्वर का ही तो प्यार है ना। बाबा ने आपका स्वभाव को नहीं देखा, देखा क्या? अरे ये ऐसी है इसको छोड़ो, ये वैसा है इसको छोड़ो, ऐसा तो नहीं किया ना। बाबा ने आत्मा को देखा ना, आत्मा को प्यार किया, ठीक है बच्चे कैसे भी हो भूल जाओ, पास्ट को भूल जाओ, छोड़ दो, अभी मैं जो कह रहा हूं उसके ऊपर फॉलो करो, आगे बढ़ो, इतना ही बोला ना। तो वो वृत्ति रखना बहुत जरूरी है आपस में। हम जैसे घूमते हैं फिरते हैं, चलते इधर उधर जाते हैं, तो कहां तक एक आत्म अभिमानी की वृत्ति रही है, दृष्टि रही है, संबंध संपर्क में वो भावना रही है, कुछ भी हो जाए स्वभाव को नहीं देखता है। पता है शुरू शुरू यज्ञ में माया शब्द नहीं था। पहले जब आपस में कुछ होता था ना, एक कराची की बात है, तभी वो लोग कहते थे इनका स्वभाव ऐसा है। माया शब्द तब आया जब सेवा के फील्ड में आए 50s के बाद। तो समझते हैं स्वभाव में डिफरेंस होता है, है, लेकिन मेरा काम क्या है? मुझे आत्मा को देखना है, तब ईश्वरीय प्रेम स्नेह मेरे संबंधों में सही रूप से रहेगा। एक तरफ से सबसे इजी एफर्ट ये है, मैं आपको बताऊं, ये है बीज, सर्व पुरुषार्थ का बीज ये है। आप इस बीज को मास्टर कर देंगे ना, एक सोल कॉन्शियस एटीट्यूड, दृष्टि, और सभी बातें बहुत इजी हो जाती है। इस फाउंडेशन को छोड़ के बाप समान बनना चाहते हैं, कर्मातीत बनना चाहते हैं, फॉरगेट इट, भूल जाओ, ऊंची ऊंची बातें भूल जाओ, पहले ये फाउंडेशन को ठीक करो। और हमने दादी को देख करके बहुत सीखा इस बात में, क्योंकि दादी जी जब विदेश में आए तो उस समय दादी ना इंग्लिश जानते थे, कल्चर अलग है, भाषा अलग है, इनका रहन सहन अलग है, और पता है ना, विदेशी लोग बहुत डायरेक्ट होते हैं, सीधा मुंह पे ना बोलते हैं, सीधा रिजेक्शन। भारत में तो भावनाएं होती है, अंदर से ना होता है, बाहर से हाँ बोल देते हैं, हाँ, लेकिन भावनाएं, रिस्पेक्ट वो रखना चाहते हैं, इसलिए ना नहीं बोलेंगे। लेकिन वहां पे तो ना मीन्स ना, नो मीन्स नो। और कई प्रकार के लोग सेंसिटिव, तो इतनी शिक्षाएं भी नहीं ले पाते हैं, टीचिंग्स भी नहीं ले पाते हैं, थोड़ा सा भी एक शब्द के ऊपर वो कैच करके फिर दादी, अरे आपने ये बोला, ये क्यों बोला, वो क्यों बोला, सेंसिटिविटी रहती है। लेकिन मैंने देखा दादी के अंदर कुछ भी होता था, जितना सामने वाला व्यक्ति ओपोज करता था या रिजेक्ट करता था, दादी क्या बोलती थी, मैं आपको मेरी गुड विशेस से मार डालूंगी। इतना दादी को अंदर का एक आत्म निश्चय था कि आत्मा में इतनी गुडनेस है, ब्राह्मणों का स्वभाव है ही प्यार का सागर बनने का स्वभाव। हम बाबा की कॉपी है ना, वो सुप्रीम प्यार का सागर, हम मास्टर प्यार के सागर है, तो ये हमारा निज गुण है, एक बहुत पावरफुल गुण है। क्या हम इस गुण को लेकर के किसी को मार नहीं सकते, प्यार से पिघला नहीं सकते हैं? हमने यूज नहीं किया है क्योंकि आत्म निश्चय की कमी है, देह को देख करके, देह के स्वभाव को देख करके खुद को सप्रेस कर दिया है। अभी अपने आप को थोड़ा दिल में चेक करो, कहां तक मेरा लवफुल और लॉफुल का बैलेंस कहां तक आया है, कितना परसेंटेज तक पहुंचा है। हर एक अपने दिल से पूछिए पहले, एक मिनट के लिए। एक बारी क्या हुआ, हम दादी के पास आए थे और हम कंप्लेंट लेके नहीं आए थे, लेकिन हमने बोला दादी ये भाई के साथ काम करना है और इसका व्यवहार ठीक नहीं है, ऐसा वैसा। तो दादी ने मुझे दृष्टि देकर के बोले, इसकी भावना को समझो। मुझे ये बात बहुत टच हो गई कि देखो, ईश्वर ने एक एक डायमंड को चुना है ना, एक एक यहां कमरे में, यू आर चोजन बाय बाबा, राइट, श्योर? तो हाथ ऊंचा कीजिए, हाँ श्योर। माना ईश्वर की भावना आपके अंदर है ना, आपको प्रेरित कर रही है ना कुछ कार्य करने के लिए, भल आपका पैकेजिंग कैसा भी हो, लेकिन भावना ईश्वर के साथ जुड़ी है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको स्पेशली संबंध में भावना समझनी है किसी की। सांप को मारना है, लाठी ना टूटे, लेकिन जब भावना को समझते हैं और हम उस भावना को आगे रख करके, हमारी भावना को भी आगे रख करके बोलते हैं, शिक्षा देते हैं, करेक्शन करते हैं, लॉ देते हैं, तब उस व्यक्ति के मुख से आएगा, हाँ ये मुझे बहुत प्यार करता है। समझ में आई? लेकिन हम उसकी भावना को नहीं समझे, हम केवल उसका स्वभाव देखते हैं, संस्कार देखते हैं, फिर हम शिक्षा देखते हैं, तो उसके मुंह से कौन से शब्द निकलेंगे, क्या बोलेगा हमारे प्रति? अरे ये तो हमको लेक्चर दे रहे हैं, ये बहुत स्ट्रिक्ट है, इसकी बात नहीं सुनो ना, कंट्रोल करना चाहते हैं ये। वेरी माइक्रो शिफ्ट की एक चेंज है ये। मैंने देखा दादियों को अप क्लोज देखा है, दादी कभी जल्दी बोलती नहीं थी, पहले उस आत्मा की भावना को समझती थी, साइलेंस में वाइब्रेशन भेजती थी उस आत्मा को, उनकी बात पहले सुनती थी, बाबा के साथ साक्षी होकर के बैठ के भावना को समझती थी, और फिर वही भावना, वो भावना टूटे नहीं। हमारा क्या होता है, ज्ञान जल्दी देते हैं, ज्ञान का तलवार लेकर के ऐसे वैसे 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 करते हैं, और भावनाएं टूटती रहती है। इसको कहेंगे प्यार और लव और लॉ का बैलेंस? नहीं, भावना वेरी इंपॉर्टेंट चीज। लेकिन भावना श्रीमत अनुसार, जब मैं आत्मा, देखो हमारे, हम जानते हैं सारे मर्यादा श्रीमत है, अमृत वेले की एक श्रीमत है, क्लास का है, लेकिन उसको पूरी तरीके से पालन करने का क्यों डिफरेंस आता है? क्योंकि पुरुष अर्थ नहीं कर रहे हैं, मेहनत से कर रहे हैं, धक्का मार करके कर रहे हैं। मैं आत्मा इस रथ को चला रही हूं, मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिमान हूं, इस कॉन्शियसनेस में नहीं पालन कर रहे हैं। तो आप ड्यूटीफुली एक एक चीज को फॉलो करेंगे, दिन में सवेरे उठेंगे, क्लास में आएंगे, वो करेंगे, लेकिन क्यों इतनी खुशी बढ़ती नहीं है, क्यों इतना उमंग नहीं बढ़ रहा है? क्योंकि ये पुरुष अर्थ, सही पुरुष अर्थ, माना मैं आत्मा चलाने वाली, इस रथ को चलाने वाली रथवान हूं, वो भान नहीं है। सिंपल है ये, माइक्रो शिफ्ट। मैं जो बातें कर रही हूं बैलेंस के लिए, मोटी मोटी बातें नहीं चाहिए, पिन पॉइंट माइक्रो शिफ्ट चाहिए आपको। हर एक संबंध व्यवहार शिव को बीच में रखो, बुद्धि में पहले शिव को सब कुछ अर्पण करो, फिर बाद में जो ये शब्द शिव को स्वीकार नहीं है तो ये शब्द बोलना ही नहीं है किसी को, जो ये संकल्प शिव को स्वीकार नहीं है तो इस संकल्प को आउट करना है, प्रैक्टिकल में लाना ही नहीं है, जो ये कर्म शिव को स्वीकार नहीं है तो नहीं करना है। अभी आप बहुत समय से बैठे हो ना, अभी हम आपको रिक्वेस्ट करते हैं, आप 3 बारी उठो और बैठो, जहां पे भी 3 बारी उठो बैठो, ओके? सभी का हो गया? अच्छा, अभी स्थिर बैठो, सीधा बैठो, अभी एक गहरा श्वास लीजिए, इसको होल्ड करो, और फिर धीरे धीरे छोड़ो। और जैसे सांस को छोड़ते हैं, अपना पूरा ध्यान इस वर्तमान समय में लेके आओ। दोबारा गहरा सांस लो, होल्ड, और धीरे धीरे छोड़ो। बिल्कुल अपना ध्यान को एकाग्र कर लो इस वर्तमान समय में। और तीसरी बार एक गहरा सांस लो, होल्ड, और धीरे धीरे छोड़ो। थोड़े समय के लिए अंदर के ओर अपना ध्यान लेके चलो और अपने आप को अंदर से फील करो, मैं कौन हूं, आपका जो सांस का जो फ्लो है उसको फॉलो कीजिए अपने स्रोत तक, कि कौन सी शक्ति है जो इस सांस को चलाती है। क्या शक्ति इस देह को प्राण देती है। और अभी अपनी पूरी शक्ति एनर्जी सारे बॉडी से ऊपर लेके चलो, एकाग्र कर लो। पूरी शक्ति को विजुलाइज कीजिए कि पूरी शक्ति ऊपर आ रही है और इस भ्रुकुटी के बीच में एकाग्र हो रही है। एक लाइट का सितारा बन जाता है। अभी थोड़े समय के लिए हम इस देह का नाम रूप भी भूल जाते हैं और यह लाइट का सितारा बन जाते हैं। और अभी तीन बारी अपने मन में ये संकल्प धीरे धीरे दोहराओ कि मैं आत्मा, चैतन्य शक्ति, शांत चित आत्मा हूं। मैं आत्मा, चैतन्य शक्ति, शांत चित आत्मा हूं। मैं आत्मा, चैतन्य शक्ति, शांत चित आत्मा। मैं आत्मा इस शरीर के मालिक हूं। इन कर्मेंद्रियों के मालिक हूं। मैं आत्मा, ईश्वर की संतान हूं। मैं बाबा सर्वशक्तिवान है और मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिमान। अभी इसी स्मृति में, अभी ये संकल्प अपने मन में क्रिएट करो कि अभी मैं आत्मा इस शरीर की मालिक होकर के अपने चॉइस से मैं अपने शरीर को उठाऊंगी और मैं आत्मा इस शरीर की मालिक इस शरीर को बिठाऊंगी। अभी इसी स्मृति में और संकल्प से आप 3 बारी दोबारा उठेंगे और बैठेंगे। मैं आत्मा इस शरीर को उठा रही हूं और मैं आत्मा इस शरीर को बिठा रही हूं। अभी वापस एकाग्र हो जाओ, अपनी सीट पे बैठ जाओ भ्रुकुटी के बीच में और जो कर्म अभी किया है भूल जाओ। मैं आत्मा चैतन्य शक्ति शांत चित आत्मा ओम शांति। फर्क पड़ा पहली बार जब आप उठे बैठे और दूसरी बारी जब आप उठे बैठे, फर्क पड़ा? क्या फर्क पड़ा? हाँ, हल्कापन महसूस हुआ। किसको हल्कापन महसूस हुआ दोबारा जब किया? अच्छा, और क्या महसूस किया? जैसे बॉडी अलग है, आप कुछ चला रहे हो, आपके ऑर्डर में चल रहा है ना। कम मेहनत लगी ना दूसरी बारी? पहली बारी तो हाय बाबा हाय बाबा हाय बाबा करके उठ रहे थे सब। हाँ, भारी लग रहा था, बॉडी की ग्रेविटी भारी लग रही थी क्योंकि आप मास्टर की सीट पे नहीं बैठे थे। ये माइक्रो शिफ्ट है। मालिक कौन है? उस सीट छोड़ के हम कर्म कर रहे हैं, इसलिए भारीपन महसूस होता है, थकान महसूस होती है, करण करावनहार की मदद नहीं प्राप्त होती है। जैसे सीट पे बैठते हो और सीट की स्मृति से आप एक्शन करते, कितना हल्कापन महसूस किया ना आपने 2 मिनट में महसूस किया। ये है बैलेंस। अभी उस सीट पे बैठेंगे, ईश्वर की संतान और शिव बाबा को आह्वान करेंगे तो आपकी तो उड़ती कला सदा ही रहेंगी। आप सोचो बाबा कैसे आपको उड़ाएगा। और ये सारी बातें जैसे खेल, पहली बारी हम डायरेक्शन दे रहे थे आपको तो आपके मन अच्छे बहन जी बोल रही हैं तो हम करें, मजबूरी से कर रहे थे। अरे बहन जी हमको क्यों उठा रही है, इतना कंफर्टेबली बैठे थे हम, ऐसे 1-2 को देख करके कर रहे थे। तो 99% आपकी जिंदगी की तो ऐसी बीत रहे हैं, किसी और के हाथ में लगाम है, किसी और के डायरेक्शन से आप लोग चल रहे हैं, इसीलिए धक्के मार के चल रहे हैं आप अपने आप को। लेकिन जैसे मैं आत्मा सच्चा पुरुषार्थ ये है जो ये काम करता है, ये गुप्त पुरुषार्थ है। मैं आत्मा एकाग्र होकर के अपने सीट पे बैठ के अपनी चॉइस से मैं अपनी कर्मेंद्रियों को चला रही हूं। फिर फ्रीडम, हल्कापन, क्योंकि मैंने अपनी चॉइस की है। समझ गई बात? ये माइक्रो शिफ्ट की बात है भाई बहने, लेकिन ध्यान बहुत चाहिए। भोजन स्वीकार करने के समय कौन है बुद्धि में? खाना है बुद्धि में? मैं आत्मा इस शरीर को खिला रही हूं, और फिर एक स्टेप और, बाबा मुझ आत्मा को खिला रहा है। फिर आप देखेंगे कितना मजा आता है सच में। आपको लगेगा आप उड़ रहे हैं ब्राह्मण जीवन में, उमंग उत्साह रहती है, हिम्मत रहती है, नेचुरल। ओके, ठीक है, थैंक यू। मैं आपको अपनी गुड विशेस से मार डालूंगी। हाँ, वो गुड विशेस नहीं भूलना। हाँ, ये भक्ति में ऐसे होता है, आधा सुनते हैं फिर अपनी खिचड़ी पकाते हैं उसकी। गुड विशेस से, ये हमारी प्रूफ है कि हमारा निज गुण है मास्टर प्यार का सागर। क्या? हाँ, सही बात है। और परिवर्तन हो जाता है, हमने करके देख लिया है ना जीवन में। लेकिन इतना बिलीफ है ना कि हमारा निज गुण प्यार का है ना, हमने लॉ को तोड़ा है इसलिए तुम्हारी हालत ऐसी हो गई है ना, गुलामी बन गए ना माया के। अभी लॉ पे चलना है तब हमको मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा मिलेगा। और खुद जो हमने सभी को अपना जैसे दिल बांट लिया है, सभी के हाथ में दे दिया है, वो वापस हम ले लेंगे। क्योंकि ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य स्वराज्य अधिकारी बनना है। ओके, थैंक यू। चलो,
बहुत बहुत थैंक्स करेंगे दीदी को। एक नया पैराडाइम दादी के मुख से एक बार सुना था, लव इज लॉ। दादी ने ये भी कहा था, प्यार से ही हमें लॉ सीखना है। और बहुत अच्छा, सबने अनुभव भी किया। थैंक यू सो मच।
है तेरी याद बाबा, जिगर में तेरा प्यार। दिल में है तेरी याद बाबा, जिगर में तेरा प्यार। तेरी श्रीमत और शिक्षाएं जीवन का आधार। तेरी श्रीमत और शिक्षाएं जीवन का आधार।
दिल में है तेरी याद बाबा, तेरी श्रीमत और शिक्षाएं जीवन का आधार।
पद्मा पदम सौभाग्यशाली तुमने हमें बनाया, न नव जीवन दे करके तुमने दिल में हमें बिठाया। ये जीवन है बाबा तुझ पर ही बलिहार,
अब तो ये जीवन है बाबा तुझ पर ही बलिहार।
तेरी श्रीमत और शिक्षाएं जीवन का आधार, तेरी श्रीमत और शिक्षाएं जीवन का आधार। जहाँ की खुशियों का मिल गया मुझे खजाना, तुमने हमें सिखलाया बाबा सबसे गुण अपनाना।
तीनों जहाँ की खुशियों का मिल गया मुझे खजाना, तुमने हमें सिखलाया बाबा सबसे गुण अपनाना।
ये आंखें करती है बाबा हर पल तेरा दीदार,
ये आंखें करती है बाबा हर पल तेरा दीदार।
तेरी श्रीमत और शिक्षाएं जीवन का आधार, तेरी श्रीमत और शिक्षाएं जीवन का आधार।